نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت النبی کے مدنی دور میں سے آج ہم دیکھیں گے غزوہ بدر دوم کو. جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں یہ بات کی کہ غزوہ بدر کے بعد احد ہوئی اور احد سے واپسی پر ابو سفیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک بات طے ہوئی اور وہ کیا تھی کہ یہ لوگ اگلے سال پھر جنگ کریں گے. انہوں نے چیلنج دیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. یہ ہے بہترین لیڈر کی کوالٹی, خود کسی کو چھیڑتا نہیں لیکن جب کوئی کچھ کہہ دے تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. ہوتا کہ ہم جب کسی کے ڈرانے سے ڈر جاتے ہیں نا تو دوسرا ہمیں پھر اور ڈراتا ہے. اس لیے اسلام کا مزاج یہی ہے, عرب کی شان و شوکت توڑنے کے بعد اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن یعنی قریش سے جنگ کی تیاری شروع کی, کیونکہ اب سال ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پہ طے کیا ہوا وقت قریب آ رہا تھا. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا یہ فرض تھا کہ اس موقع پر ابو سفیان اور ان کی قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں اور اس طریقے سے حکمت کے ساتھ کام کریں کہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور حالات کا رخ بدل جائے. اس کے لیے شعبان 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپا اور اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ کیا. آپ کے ساتھ تقریباً 1500 لوگ تھے 1500 کے قریب اور 10 گھوڑے تھے. فوج کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے. یہاں سے مزاج دیکھیے, جرت دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. معافیاں مانگنے کی بجائے, سینکشنز لینے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے کہ کسی کو دوبارہ ایسی بات کرنے کا موقع نہ ملے. احد سے واپسی پہ جو دشمن کی دھمکی تھی اس کو ذرا آج کے حالات کے ساتھ بھی تو ٹیلی کر کے دیکھیے کہ آج کے دور میں کس طریقے سے ہر چند مہینوں اور سالوں کے بعد مسلمانوں کو جنگ کی دھمکیاں ملتی ہیں, کس طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو بے بس مجبور سمجھتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسلمان پھر ایسے وقت پہ پس جاتے ہیں. ان کی پالیسیز, ان کی یہ اور ان کی وہ, اور ہوتے ہوتے مسلمان جو ہیں پھر وہ ہر بات میں کمپرومائزنگ ہونے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرات کا کام کیا. اب مسلمان جب وہاں پہنچ چکے تو دشمنوں کو بھی خبر مل گئی کہ مسلمان موجود ہیں, لہٰذا ابو سفیان بھی اپنے ساتھ 50 سواروں سمیت 2000 لوگوں کو لے کر آیا. یہ ایک چیز آپ کو ہمیشہ ایک سے ملے گی اور وہ کیا کہ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی. بعض دفعہ دین کا کام کرتے ہوئے ہم لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوگ تھوڑے ہیں, اسباب نہیں ہیں, ابھی یہ نہیں ریسورسز کی کمی ہے. درست بات نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہی یہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہوئے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے. تو مشرکین 2000 کا لشکر لے کر آئے اور مکہ سے نکل چکے ہیں. مراو زہران نام کی ایک وادی میں پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور قلعے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, لیکن شروع سے بوجھل اور بددل تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ جب بھی اس نے مسلمانوں کی مدد کی تو دشمنوں کو بددل کر دیا. بار بار وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچنے لگے, ان پر رعب اور ہیبت طاری ہو گیا. مراو زہران نام کی جگہ پر پہنچے تو ہمت جواب دے گئی, واپسی کے بہانے سوچنے لگے. آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں فیس نہیں کر سکے. بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں, اس وقت جنگ موضوع نہیں ہے. جنگ تو تب اچھی ہوتی ہے جب شادابی ہو, ہریالی ہو, جانور چرے چگیں, تم بھی دودھ پی سکو, اور اس وقت خشک سالی ہے تو میں واپس چلتا ہوں, تم بھی چلو. ایسے لگتا ہے کہ سارے لشکر پہ ہی ہیبت طاری تھی. کسی نے ابو سفیان کے اس مشورے کی مخالفت نہیں کی, واپس چلے گئے اور ایک نے بھی نہ کہا کہ نہیں نہیں ہم رہیں گے, لڑیں گے. یاد رکھیے, اللہ کے لیے کام کرنا اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ وہ آپ سے بہت کام کرائے گا. اس کے علاوہ ایون کفر کے لیے کام کرنے والے, گرج کے لیے کام کرنے والے, پیسے کے لیے کام کرنے والے, دنیاوی فائدوں کے لیے کام کرنے والے تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والے کبھی نہیں تھکتے. شرط ایک ہی ہے کہ آپ کا موٹیویشن قائم رہے, اور وہ کب قائم رہتا ہے؟ جب ہم اللہ کی بات की डोज लेते रहते हैं। आज हम अपनी एक मीटिंग में थे तो वहाँ बात हो रही थी किसी और के बारे में। काम भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं और साथ क्लासेस भी हैं। कुछ मजबूरियों में थी तो काम की ज़रूरत पड़ती है तो आ जाती हैं। क्लास के वक्त में वो सोचती हैं कि वो मजबूर हैं। तो वहाँ मीटिंग में बैठे हुए एक और साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन कामों के करने की हिम्मत भी तब मिलती है जब हम क्लासेस लेते हैं। और मैंने कहा इट्स ट्रू। अगर आप ये क्लासेस ना ले रही हों जो आपको हर क्लास में एज अ कोऑर्डिनेटर या क्लास इंचार्ज लेनी पड़ती हैं तो आप भी ना काम कर पाए। कह रही इट्स ट्रू। तो याद रखिएगा, अगर आप अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हैं ना तो आप खुद भी आए। आप किसी को कहते हैं सुने, आप भी सुने। 10 दफ़ा नोट्स लिए हुए ना, 11वीं दफ़ा फिर लें, वही बात आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पहली दफ़ा सोच रहे हैं। तो अबू सुफियान के पास कोई बेस नहीं थी, कुफर की कोई बेस होती नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अमल बातिलू, जो बातिल है वो तो जुफा है, जफा करने वाला है, वो तो बिल्कुल अपनी जगह छोड़ देता है जब भी उसको मौका मिलता है। लिहाजा ये सब जो थे वापस जाने लगे। 8 दिन तक मुसलमानों ने बदर के कुएं पर ठहर कर दुश्मनों का इंतज़ार किया, वहाँ अपना सामान तिजारत बेचा, 1 दिरहम के 2 दिरहम बनाए और बड़ी शान से मदीना वापस आए, क्योंकि ये भी धाक बैठ चुकी थी कि मुसलमान डरे नहीं, आगे आए पेशकदमी की, और माहौल पर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। और ये गजवा तारीख में गजवा बदर दोम, मुआइद दोबारा होने वाला गजवा, या फिर बदर सानिया, बदर उल उखरा या बदर सुखरा के नामों से मारूफ है। अगर इस मिजाज को समझ जाएं तो आज के मुसलमान लीडर्स को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। अल्लाह को ये शिर्क पसंद नहीं है कि आप अल्लाह की भी बात करें और अल्लाह पे तवक्कुल करने का दावा करें फिर इस बात से डरें कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोगों को क्या होगा, धमकी दी, जंग ना लग गई, तैयारी तो है नहीं। जो है सो है, बस जो नहीं है वो नहीं है। इसके बाद अगला गजवा गजवा दूमतुल जुंदल के नाम से मारूफ है। जब बदर से वापस आए अल्लाह के नबी, हर तरफ अमन और अमान कायम था, मुसलमानों की धाक बैठ चुकी थी, ऐसे लगता था कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के कदम जम रहे हैं। अब आपने अरब के आखिरी हदूद तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का फैसला किया। ज़रूरत भी थी ताकि हर तरफ से मुसलमानों का कब्जा रहे, कंट्रोल रहे, और दोस्त दुश्मन सब इस चीज़ को महसूस करें कि इस्लाम आने वाले वक्त का सबसे बड़ा पैशन बन चुका है, इस्लाम सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। चुनाचे बदर सुगरा के तकरीबन 6 माह बाद तक आपने मुतमईन होकर मदीना में क़याम किया। इसके बाद आपको कुछ इत्तलात मिली कि शाम के करीब दूमतुल जुंदल के गिर्द अवध कबाइल जो हैं वो आने जाने वाले काफिलों पर डाके डाल रहे हैं और वहाँ से गुजरने वालों की चीज़ों को लूटते हैं। और ये भी पता चला कि उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी जमात तैयार कर ली है। बस ये थी वो सारी खबरें जिस पर अल्लाह के नबी ने कदम उठाया। यहाँ से आपको बेदार मगज़ लीडरशिप भी दिखेगी, इसके बगैर काम नहीं होते। बेवकूफ़ बन के अपने ही नटशेल में घूमते रहना, दुनिया की खबर नहीं, दुनिया में हो क्या रहे इसको न देखें, तो याद रखिए ऐसे लोगों को फिर पीस के लोग रख देते हैं। अल्लाह के नबी हालात की खबर लेने वाले, नफ्स पे हाथ रखने वाले। आपने इन सारी बातों को नोट किया और सुबाब बिन अरफता गफ्फारी को मदीने में जानशीन मुकरर किया। तकरीबन 1,000 मुसलमानों की नफरी के साथ कूच किया। 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी का ये वाक़या है, 25 रबीउल अव्वल था। रास्ता बताने के लिए आपने एक शख्स को रखा। उस दौर में ऐसे लोग होते थे कि जो इन चीज़ों के माहिर होते थे। बहरहाल आपका इस गजबे में मामूल था कि रात में सफ़र करते, दिन में छुपे रहते, ताकि दुश्मन पर अचानक और बेखबरी में टूट पड़े। करीब पहुंचे तो पता चला कि वो लोग बाहर निकल गए हैं, लिहाजा उनके मवेशियों और चरवाहे थे उन पर हल्ला बोल दिया। कुछ हाथ आए, कुछ बाहर निकल भागे। दुमतुल जुंदल के जो लोग थे उनको जिधर रुख मिला चल पड़े। मुसलमानों की रोब उन पे दिलों पे आ चुका था। जब मुसलमान उस जगह पहुंचे तो कोई भी ना मिला। चंद दिन वहां रहे, इधर उधर कई दस्ते रवाना किए, कोई हाथ ना आया। फिर आप मदीना पलट आए। इस गजे में उयना बिन हसन से भी सुलह हो गई। दूमा का जो लफ्ज़ है ना, ये दाल को पेश पे पड़ते हैं। शाम की सरहद के करीब एक शहर है। यहाँ से दमिश्क का फासला तकरीबन 5 रात और मदीने का 15 रात है। आप कह सकते हैं कि मदीना यहाँ से दूर है और दमिश्क करीब है। अब ये इस तरह का जुरतमंदाना कदम था, अचानक फैसला था, हिकमत से भरा हुआ था कि इससे फिर इस्लाम का रुख चलता गया और वक्त की रफ्तार का रुख मुसलमानों के हक में मुड़ता गया।
अंदर और बाहर की मुश्किलात की शिद्दत कम हुई। मुनाफिकीन भी क्या करते, खामोश होके बैठ गए कि अब क्या करें। यहूद का एक कबीला जिला वतन किया गया, दूसरे कबाइल ने हमसायगी के हक और अहदो पैमान के पूरा करने का मुजाहरा किया। बद्दू और अराब ढीले पड़ गए। कुरैश ने मुसलमानों के साथ टकराने से गुरेज किया और मुसलमानों को इस्लाम फैलाने और अपने रब के पैगाम की तबलीग करने के लिए मौके मिले। एक जैसा काम नहीं तो दूसरा, अब ये कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर दूसरा करेंगे, ये है इस्लाम का मिजाज। तो ये थे वो छोटे छोटे गजवात जो गजवे उहद के बाद हुए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा गजवा शुरू होता है जिसको तारीख गजवे अहजाब के नाम से जानती है। इसका नाम गजवे खंदक भी है। अहजाब हिज्ब की जमा, हिज्ब कहते हैं गिरोह को, अहजाब कहते हैं गिरोहों को, और इसी पे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत सूरत अल अहजाब है, उसमें इस जंग की बहुत सारी झलकियाँ। और खंदक कहते हैं डिच को, जमीन में गड़ा खोद के जब मुसलमानों ने अपना दिफा किया था तो उस नाम से इस जंग को जंग खंदक कहते हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड देखते हैं। जब मुसलमानों के इन सारे इकदाम से इर्द गिर्द अमन कायम हुआ, मुसलमानों को थोड़ा अमन सुकून मिला, लेकिन साथ रहने वाले दोस्त जो हमसाए अच्छे ना मिले मुसलमानों को, उनमें यहूद थे, उन्होंने कुछ इस किस्म की साजिशें की कि जिसकी वजह से वो उसका मज़ा चख चुके थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सीखते नहीं हैं, लगता है कि ये कुछ ऐसे ही लोगों में से थे। उन्होंने पिछली जंगों से कुछ ना सीखा और धोखा दही और खयानत और मकर और साजिश के नए जाल बुनने शुरू कर दिए। जब खैबर पहुंच गए, पहले तो उन्होंने इंतज़ार किया कि ज़रा देखते हैं कि मुसलमानों का मुशरिकीन ने मक्का के साथ क्या मामला होता है, शायद इस नतीजे में खुद ही मुसलमान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब देखा कि दिन ब दिन हालात मुसलमानों के लिए ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह सरवाइव कर रहे हैं, और वक्त की गर्दिश ने उनके असर को और मुसलमानों की धाक को ज़्यादा चक किया, तो फिर उनके अंदर दोबारा वही जज्बे उभरे जो कि शुरू से थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की हुक्मरानी का सिक्का बैठ चुका है, तो दुख के मारे अब उन्होंने नई साजिशें बुनी और एक ऐसी आखिरी साजिश करने की कोशिश की, एक ऐसी कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की कि जिससे अब ना रहे इस्लाम और ना रहे नबी सल्लम और सब कुछ ख़त्म हो। लेकिन इसके लिए जुरत की ज़रूरत होती है और जुरतमंद ये नहीं थे, इसके लिए बहादुरी की ज़रूरत होती है और ये बहादुर नहीं थे, इसके लिए सामने आना पड़ता है और ये आने को तैयार नहीं थे। चुनाचे इन्होंने फिर वही किया जो हमेशा करते थे, हैं और शायद रहेंगे, और वो क्या था कि दूसरों को इश्तियाल दिलाकर मुसलमानों के खिलाफ करते हैं और खुद पीछे रहते हैं। साजिशों का जाल बुना। बनु नज़ीर के 20 सरदार और रहनुमा मक्का पहुंचे, कुरैश के पास गए, उनको अल्लाह के नबी सल्लम के खिलाफ जंग के लिए खूब प्रवोक किया और अपनी मदद का यकीन दिलाया। कुरैश जो पहले ही टूटे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि इस तरह से हमें सपोर्ट मिल रही है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, इनकी बात मानी, क्योंकि ओहद के रोज़ मैदान बदर में मुसलमानों से जंग का जो वादा कर चुके थे, अब खुद ही उसको तोड़ चुके थे, तो उनको लगा कि चलो अब एक और जंग करते हैं जिससे हमारी खोई हुई इज्जत फिर वापस आएगी और हम अपनी बात को पूरा कर लेंगे। इसके बाद यहूद का ये वफद बनू गतफान के पास गया और इनको भी जंग के लिए तैयार किया। किस्सा मुख्तसर कि इस वफद ने कबायली इलाकों में घूम घूम कर सारे कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ जंग की रग़बत दिलाई और बहुत सारे लोग तैयार हुए। आप कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना कन्विंसिंग की, मार्केटिंग की, क्या ये करें वो करें, आज भी कुफर देखिए कितनी हमदर्दियाँ रखता है एक दूसरे से और मुसलमानों के खिलाफ कितना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। हम मुसलमान अपने सच्चे दीन को फैलाने के लिए इतनी कोशिश नहीं करते जितना लोग इस सच्चे दीन को मिटाने की कोशिश करते हैं। हम इस नूर को, इस रोशनी को लोगों तक पहुंचाने में इतनी कोशिश शायद नहीं करते होंगे जितनी ये इस नूर को बुझाने की कोशिश में अपनी कोशिशें करते हैं। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह साथ देता है अपने बंदों का, और ये वही लोग होते हैं जो अल्लाह सुबहान तआला के फैसलों पे वाकई फिर राजी हो जाते हैं। और इसके बाद हुआ क्या कि जब मुख्तलिफ इलाकों में घूमे, बहुत सारे लोग तैयार हुए, तो मुसलमानों के लिए ये भी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह के नबी को खबर होती थी हर तरह की बात की, ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही बैठ के आ जाते थे, अल्लाह के नबी को भी कुछ खबरें मिल रही थी। इस पूरे गिरोह ने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को जमा किया, जनूब से कुरैश को और कनाना को, तहामा को, और इसी तरह इर्द गिर्द के इलाकों को जमा किया। अबू सुफियान अमीर लश्कर बने और तकरीबन 4,000 का लश्कर लेकर चल पड़े। जब ये लश्कर मराव जहरान तक पहुंचा तो बनू सुलैम भी इनमें शामिल हो गए। इधर इसी वक्त मशरक की तरफ से कुछ और कबाइल, कबीला गतफान, फजारा, मुर्रा और अश्जो ने भी साथ देने का फैसला किया। फजारा का सिपा सलार जो था वो उयैना बिन हुसैन था, बनू मुर्रा का हारिस था और बनू अश्जो का मसर बिन रखीला था। इसी तरह बनू असर के कुछ लोग और दीगर कबाइल के लोग भी इसमें आ गए। सब ने एक प्लानिंग के साथ मदीना का रुख किया। चंद दिन के अंदर अंदर मदीने के पास 10,000 सिपाहियों का एक ज़बरदस्त लश्कर तय जमा हो गया। ज़रा आज के तनाजुर में सोचिए तो सही, हाथ ठंडे होते हैं? इतनी तो मदीना की आबादी भी नहीं थी जितना बड़ा लश्कर आ गया। पूरी आबादी मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को मिलाकर भी इसके बराबर नहीं थी। और अगर ये सारे आके मदीना में चले जाते तो आप देखिए, एक एक ने एक एक को लेके शायद चंद घंटों में पूरे मदीना पे कंट्रोल करना था। और बड़ी बात नहीं कि मुसलमानों का उस दिन पत्ता कट जाता। कैसे वक्तों पे इससे इस्लाम गुजरा, हमें तो ये दर्द ही नहीं है, हमने तो कभी इसको सोचा भी नहीं है। ऐसे वक्त में फिर मदीना के अंदर जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेदार मगज़ और चौकस कायद थे। आपकी उंगलियां हमेशा हालात की नब्ज़ पर रहती और आप हालात का तजिया करके आने वाले वक्त का ठीक ठीक अंदाज़ा भी लगाते थे, बेहतरीन स्टेप उठा लेते थे। और ये अल्लाह की देन होती है, और अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। अगर वक्त से पहले आपको सूझ जाए कि आपने करना क्या है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं उसकी निस्बत कि आपको पता ही ना चले। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं, कहते हमें पता ही नहीं लगता। अच्छा, ये भी करना था, हमें तो एहसास ही नहीं था। अच्छा, कोई एहसास दिला ना, फिर वो एहसास दिलाने वाले से भी अच्छा काम कर लेंगे, खुद नहीं पता चलता। तो ये मांगने की चीज़ है, ये फरकान है, इसके लिए अल्लाह से तड़पना पड़ता है। आज सुबह हमने खुलासे कुरान में सूरत अनफाल शुरू की, तो उसमें था कि अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें फरकान देगा। तो बहुत ही खूबसूरत बात उस पर अल्लाह ने ज़ुबान से निकलवाई कि अल्लाह से लाड करो, अल्लाह नहीं मुझे समझ आनी है, अल्लाह नहीं बस प्लीज़ आप मुझे बता दें क्या ठीक है। जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत भरी बात करके उससे मान के साथ मांगते हैं ना कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कह रहे हैं, आप बताएं ये काम करूं कि ना करूं, कैसे करूं, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये चीज़ बदरजा उत्तम दी हुई थी कि आपको आने वाले वक्त के हालात पहले ही दिखने लगते थे। जो ही ये खबर मिली आपने शूरा बुलाई, मशवरा मांगा किस तरह मुसलमानों का डिफेंसिव प्लान जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसमें हजरत सलमान फारसी भी थे, उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी, फारस में जब कभी कोई हमारा घेराव करता है तो हम अपने इर्द गिर्द खंदक खोद देते हैं। अब वक्त और हालात के मुताबिक ये बड़ी बाहिकमत किस्म की दिफाई तजवीज़ थी। अहले अरब इससे बिल्कुल वाकिफ ना थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया, कहा कि ठीक है, हर 10 लोगों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम दिया। सोचिएगा ज़रा, 10 लोग 40 हाथ, और 40 आपको पता है कितने होते हैं, हाथ उंगलियों से लेके कोहनी तक का जगह होती है, और तकरीबन कमोबेश कर लीजिए तो 1 फुट से तो ज़्यादा ही होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि 10 लोगों को 40 फीट खंदक खोदनी थी। कितनी चौड़ी लंबी कि जिसमें से दुश्मन गुजर ना सके, जिसके अंदर उसके घोड़े ना जा सके, इस किस्म के हालात थे। जान जोखों का काम था, जिसको हमारे यहाँ कह लीजिए कि जुए शीर लाने के बराबर था। लेकिन क्या वो प्यारे मुसलमान थे, मेहनत की, दिल जमई से खंदक खोदनी शुरू की। अल्लाह के नबी ना सिर्फ ये कि लोगों को रग़बत दिलाते बल्कि ख़ुद भी यही काम करते थे। सही बुखारी में हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ खंदक में थे, लोग खुदाई कर रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे। कितने में अल्लाह के नबी ने यह प्यारा शेर पढ़ा, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल मुहाजरीन वल अंसार। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखरत की ज़िंदगी है, बस मुहाजरीन और अंसार को बख्श दे। ये बातें फिर काम कराती हैं ना, जब मौत याद आती है, जब आखरत याद आती है, फिर दुनिया के गमों पे नहीं बंदा रोता है। खुशी तो है, गम में तो है, अपने हैं तो है, नहीं है कोई तो कोई नहीं, तन्हाई दुस्ती जो भी, अल्लाह बस हमें तो आखरत की धुन लगी हुई है, जो जिस हाल में अल्लाह तेरे हवाले हम अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत अनस से रिवायत है कि खंदक के दिन जब नबी सल्लम आए तो देखा कि मुहाजरीन और अंसार एक ठंडी सुबह में खुदाई का काम कर रहे थे। सोचिए ज़रा, सर्दी है और ओपन एयर में आप खुदाई कर रहे हैं, ना उनके पास ग़ुलाम थे कि उनकी बजाय वो काम कर देते। आपने इनकी मशक्क़त और भूख को देखकर फरमाया, اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اس پہ انصار اور مہاجرین نے جواب دیا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کے باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے. یعنی ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، مر جائیں گے نا اور کیا ہوگا، پھر کیا کام آ گیا. بخاری میں حضرت براء بن عازب سے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے پیٹ کی جلد ڈھانک دی، یعنی مٹی لگ گئی جسم کو. آپ کے بال بہت زیادہ تھے. میں نے اسی حالت میں آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا. آپ مٹی ڈھوتے جاتے اور کہتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینتا علینا وثبت الاقدام الاقینا ان الاول رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا. اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ. انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے. سبحان اللہ، یہ جرات، یہ حوصلے. حضرت برا فرماتا ہے کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، جیسے شعر کو پڑھنا ہوتا ہے ایک جیسا سانگ کی شکل میں، آخری شعر بعد کہتے، اس طرح آپ لمبا کرتے تھے. کن لو لقد بغوا علینا وان ارادوا فتنتنا بینا، یعنی اگر انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور اگر ہمیں کسی فتنے میں ڈالنا چاہا تو ہم ہرگز سرنگونہ ہوں گے. پوری گرم جوشی سے مسلمان کام کر رہے تھے، دوسری طرف شدت کی بھوک. تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن کیا دو مٹھی جو لایا جاتا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا. لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا اور اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی. یہ حدیث آپ نے لکھنی ہے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کچن میں رکھنی ہے، سب پڑھیں. یہ اسلام کوئی کھاتے پیتے نہیں ہے، آج تو چسکے والا دین ہے نا، حلوہ پوری والا دین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام بڑی مشکلوں سے گزر کے آیا ہے. ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے جس طرح سے یہ اسلام ہمارے پاس آیا ہے. ہم تو ذرا اپنی پکی ہوئی چیز اگلے دیں گے تو کہتے ہم نہیں کھاتے، ہم باسی کھانا نہیں کھاتے، بدبو اٹھتی ہوئی چکنائی کے ساتھ سے سب کرتے تھے. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جس پر ایک ایک پتھر رکھا ہوا تھا. تو آپ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر رکھے ہوئے تھے. ترمذی کی روایت ہے. ہم کتنے فخر کرتے ہیں، ابھی کیا کیا ہم نے، ابھی اپنوں کو تو سیدھا نہیں کر پا رہے، غیروں تک تو جانا نہیں، ہمیں کوئی خندقیں نہیں کھودنی پڑی اپنے دفاع کے لیے، پھر بھی ہم روئیں، پھر بھی ہم دکھی ہیں، پھر بھی ہم بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھیں کہ تیر مار لیا ہم نے، تو پھر یہ ہماری نادانی ہے. آپ کو پتہ کہ جتنی بڑی مشکل آتی ہے نا اتنی بڑی خیر بھی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے. خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی بہت ساری نشانیاں سامنے آئیں، اور یہ ایک ایک بات اس بات کی دلیل تھی کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے تو اللہ پھر کس طریقے سے ماورائی قوتوں سے اس بندے کی مدد کراتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسپرچل فورسز کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی مدد کرائی. ان میں سے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے، تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو پیسا. پھر اللہ کے نبی سے رازداری سے گزارش کی کہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آئیے اور کھانا کھا لیں، لیکن اللہ کے نبی نے تمام اہل خندق کو جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی ساتھ لے کر چل پڑے. جابر کی کیا حالت ہوگی اور بیوی کا کیا حال ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا نا کہ تھوڑے لوگوں کو لے آؤ، तो अब ज़्यादा ले आए तो फिर उनको पता ही होगा, ये ट्रस्ट होता था लीडरशिप पे कि इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, मान गए। और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला बांधता भी है, उनके दिल भी जमते हैं, उनको मुश्किलात में आसानियाँ भी मिल जाती हैं। सब गए, जितना खा सकते थे खाया, फिर भी गोश्त की हांडी अपनी हालत पर बरकरार रही, जोश मार रही थी, और गुंदा वाटा बिल्कुल ऐसे था जैसे अभी गुंदा। ये अल्लाह की वादे हैं, अल्लाह दे देगा आपको वो सब कुछ जो आप मांगते हैं, और वो भी दे देगा जो आप नहीं मांगते। आपकी नीड्स भी पूरी करेगा और आपकी वांट्स भी पूरी करेगा, शर्त एक है कि आपका ये सफ़र अल्लाह के रास्ते में हो। इसी तरह के एक और वाक्या हज़रत नुमान बिन बशीर की बहन के साथ भी पेश आया। खंदक के पास दो मुट्ठी खजूरें लेकर आईं कि इनके भाई और मामू खा लेंगे। हर एक को अपने रिश्तेदार की तो फिक्र होती थी, दिल भी चाहता होगा कि सबको दें, लेकिन इतना होता भी नहीं। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी तो आपने उनसे वो खजूरें ले ली और एक कपड़े के ऊपर बखेर दी, फिर सबको बुलाया। पता कितने थे? 1,000 के करीब लोग थे। और अहले खंदक उन्हें खाते गए और वो भड़ती गईं, सब खा चुके और खजूरें थी कि कपड़े के किनारों से बाहर गिर रही थी। आज उस नबी की बरकत क्यों नहीं होगी उस उम्मत पर जहाँ वो उतना ही खूबसूरत दीन छोड़ कर गए। इसी तरह से लग रहा था कि हर दिन एक से बढ़कर एक वाक्य और है। इमाम बुखारी हज़रत जाबिर की रिवायत से बयान करते हैं कि हम लोग खंदक खोद रहे थे तो एक चट्टान नुमा टुकड़ा बीच में आ गया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहा, अल्लाह के नबी, ये टुकड़ा हमसे नहीं टूट रहा। आपने कहा, मैं उतरता हूँ। फिर आप उठे और आपने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ था। कहते, हमने 3 रोज़ से कुछ चखा न था। और अल्लाह के नबी ने कुदाल लेकर मारा तो चट्टान यूं उभर उभर के इधर उधर गई कि गोया कि बर्फ़ का एक तोता है या मिट्टी का तोता। हज़रत बरा कहते हैं कि जंगे खंदक के मौके पे खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान आ गई, जब कुदाल उस पर डालते तो वो यूं उससे हटके जाती, टूटता नहीं था। अल्लाह के नबी के पास आकर लोगों ने शिकवा किया। आप आए, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुदाल को उस पर लगाया, एक टुकड़ा टूटा, और आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम की चाबियां दी गईं, वल्लाही मैं इस वक्त वहां के सुर्ख महल देख रहा हूँ। फिर आपने एक और ज़र्ब लगाई, दूसरा टुकड़ा टूटा, आपने कहा, अल्लाह अकबर, मुझे फारस दिया गया, वल्लाही इस वक्त मैं मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। फिर तीसरी ज़र्ब लगाई और फरमाया, बिस्मिल्लाह, तो बाकी चट्टान भी टूट गई। आपने कहा, मुझे यमन की कुंजियाँ दी गईं, वल्लाही इस वक्त मैं अपनी इस जगह से सना के फाटक देख रहा हूँ। कोई मौजज़ात का इनकार नहीं कर सकता जो अल्लाह ने अपने नबी को दिए। असल बात यह है कि हम आज उसे दलील लेकर शिर्क का दरवाज़ा ना खोल दें, लेकिन इस दौर में बहुत था। कभी आप सोचे कि पिछली जंगों में ऐसे क्यों ना हुआ, कम हुआ ना? ठीक है, चंद बातें देखी हमने, पत्थर फेंके और सबकी आंखों में चले गए, फरिश्ते आए, लेकिन इस तरह के अनयूजल वाक़यात जो खंदक के मैदान में हुए वो कहीं और नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ हालात थे वो और जगह नहीं थे। रात जितनी गहरी होती है उतनी स्याह होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये सब इसलिए दिखाया कि आपका दिल सलामत रहे। हंसने वाले हंसे, इसी पे तो आयात उतरी थी कि अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। मुनाफिकों ने हंसी उड़ाई, अच्छा जी, आज पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और बात करते हैं रूम और फारस के महल्लात की। उस पे अल्लाह ने कहा, अच्छा, तुम्हें क्या पता अल्लाह क्या कर सकता है। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, वो दे वो छीन ले उसके हाथ में। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत सलमान से भी मिलती है। अब ये सारा कुछ हो रहा था, साथ साथ मुश्किलात भी थी, लेकिन ऐसे लगता है कि मुश्किलात पर अल्लाह ताला की तरफ से थपकियां भी दी जा रही थी। मदीना के शमाल के अलावा बाकी सारी तरफ जो थे वो बड़े बड़े चट्टानें थी, पहाड़ थे लावे के बने हुए, पहाड़ों और खजूरों के बागात भी थे। अल्लाह के नबी बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि मदीने पर इतने बड़े लश्कर का अगर आना होगा तो वो शमाल से ही होगा, इसलिए आपने सिर्फ उसी जानिब खंदक खुदाई, पीछे तो पहाड़ी सिलसिला था। काम मुसलसल जारी रहा, दिन भर खुदाई करते और शाम को घर पलट कर आते, यहाँ तक कि मदीने की दीवारों तक कुफार के लश्कर पहुँचने से पहले मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक खंदक तैयार हो गई। ये है कमिटमेंट, यहाँ से ये सीखने की ज़रूरत है। जब मिल के कोई काम करते हैं, अज़म से करते हैं, ऐसे लगता है अल्लाह उसी वक्त पे वो काम करा देता है जब फोन करना होता है। इसबाब पे कोई भरोसा ना करें, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। आज भी अल्लाह ऐसी ही हिकमतें दे कि किस तरीके से मुसलमान तैयार हो के बैठे में कि आओ फिर अब किस में जुर्रत है कि तुम हमारे साथ मामला कर सकते हो। इधर का मामला हमने देखा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसको इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में देखेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों से नसीहत लेने वाला और इन तरीकों पे अमल करके अपने लिए कामयाबियों के रास्ते खुलवाने वाला बना ले।
इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम आगे कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, गलतियों की इस्लाह कर दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।